27 अप्रैल शुक्रवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने साझा घोषणा पत्र में कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता जताई। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वुहान में आज पहले दिन की मुलाकात, कल भी होगी बातचीत और विवेचना में आज करेंगे बात हेमवती नंदन बहुगुणा की।
मेरे मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी से और मुझसे बुनियादी एक बात पर पहले ही झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ के करूं। मेरा कहना था कि बैक सीट ड्राइविंग संभव नहीं है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ मुलाकात के बाद वापस अपने देश लौट आए हैं। प्रतीकों और गर्मजोशी से भरी इस वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने कहा है कि वो कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने और 70 साल पहले शुरू हुए युद्ध का अंत करने के लिए काम करेंगे। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस ऐतिहासिक दिन को कोरिया के लोग भूल नहीं पाएंगे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि परमाणु मुक्त उद्देश्य को कैसे हासिल किया जाएगा। कुछ विश्लेषकों ने उत्तर कोरिया की ओर से दिखाए जा रहे उत्साह और वचनबद्धता के प्रति आशंकाएं भी जाहिर की हैं। चीन ने उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच वार्ता के बाद ये ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए दोनों देश के नेताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता और हिम्मत की दाद दी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये बैठक कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से खतरा महसूस करने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी इसे सकारात्मक कदम बताया है। आबे ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उत्तर कोरिया अपने वादे पूरे करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। एक ट्वीट में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये वक्त ही बताएगा। रूस ने इस वार्ता को बेहद सकारात्मक घटना कहा है। फलस्तीनी लगातार पांचवें शुक्रवार गजा के इजराइल सीमा से सटे इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल से जवाब में अत्यधिक बल प्रयोग न करने के लिए कहा है। इजरायली सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी है और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मानवाधिकार मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैन ने पिछले कुछ सप्ताह के दौरान प्रदर्शन में लोगों के मारे जाने को अफसोसजनक बताते हुए कहा है कि इजराइल की गोलीबारी में घायल लोगों की संख्या चौंका देने वाली है। अब तक कम से कम 40 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 5,500 से अधिक घायल हुए हैं। हुसैन के प्रवक्ता रूबर्ट कॉलबिले ने कहा, बीते महीने में गजा में बच्चों समेत फलस्तीनियों के बड़ी तादाद में मारे जाने और घायल होने के बाद मानवाधिकारों के उच्चायुक्त जैद राद अल हुसैन ने आज इसराइल से कहा है कि उसके बल अत्यधिक ताकत का इस्तेमाल न करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। चीन में एक हमलावर ने स्कूल से लौट रहे बच्चों पर चाकू से हमला कर 7 बच्चों की हत्या कर दी है और 19 को घायल कर दिया है। चीन के उत्तरी राज्य में हुए ये हमला हाल के सालों का सबसे बड़ा चाकू हमला है। अधिकारियों ने अभी मारे गए बच्चों की उम्र के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जिस मिडिल स्कूल में वो पढ़ते हैं वहाँ छात्रों की औसत उम्र 12 से 15 साल के बीच है। पुलिस ने अभी तक हमलावर के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बुरुंडी की एक अदालत ने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को विपक्ष के प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के आरोपों के तहत 32 साल कारावास की सजा सुनाई है। जर्मेन रुक्विकी पर एक विद्रोह अभियान में हिस्सा लेने, सुरक्षा बलों की हत्या में हिस्सा लेने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं। सजा सुनाए जाने के दौरान रुक्विकी या उनके वकील अदालत में मौजूद नहीं थे। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक बुरुंडी में ये किसी कार्यकर्ता को दी गई सबसे कड़ी सजा है। राष्ट्रपति पियरे नुकुरुनजीजा के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के आरोप में सैकड़ों कार्यकर्ता जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले में चल रही अदालती सुनवाई पर 7 मई तक के लिए रोक लगा दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से शाम की सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। 65 साल के बाद आज वो दिन आया जब उत्तर कोरिया का कोई नेता दक्षिण कोरिया पहुंचा। किम जोंग उन ने आज पूरा दिन दक्षिण कोरिया में बिताया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने उत्तर कोरिया के नेता को गले लगाया। दोनों ने कई दफ़े हाथ मिलाए और न जाने कितनी तस्वीरें खिंचवाई। मेल मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया। इसमें कई बातें कही गई हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता जताई गई है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए नवीन नेगी से।
शुक्रवार यानी आज की सुबह दक्षिण कोरिया के लिए खास थी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की आगवानी के लिए राष्ट्रपति मून जे इन के रवाना होते वक्त समर्थकों के उत्साह में ये साफ झलक रहा था। स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे पन मुंजोम में दोनों नेताओं के हाथ मिले और वो लम्हा इतिहास के नए पड़ाव में दाखिल हो गया। इसके ठीक पहले किम जोंग उन 65 साल में बॉर्डर लाइन पार करने वाले पहले उत्तर कोरिया के नेता बने। सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, तभी किम जोंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून का हाथ पकड़े उन्हें अपने साथ उत्तर कोरिया की तरफ ले गए, तस्वीरें खिंचवाईं और फिर दोनों नेता दोबारा दक्षिण कोरिया की तरफ आए। स्वागत की रस्मों के बाद किम और मून पीस हाउस पहुंचे। बातचीत के पहले दौर के बाद दोनों नेता लंच के लिए अलग हुए और किम उत्तर कोरिया की तरफ वापस लौटे। दूसरे सत्र में दोनों नेताओं ने चीड़ का पेड़ लगाया। इसके बाद साझा बयान भी जारी किया गया। दोनों नेताओं ने कहा कि वो इस साल शांति समझौते पर दस्तखत करने के लिए काम करेंगे। किम जोंग उन ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा,
हम इस पल का इंतजार कर रहे थे और अब जब हम मिले हैं तो ये महसूस कर रहे हैं कि हमें अलग नहीं किया जा सकता है। हम एक देश हैं। मैं ऐसा ही महसूस करता हूँ। हम एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। इसकी कोई वजह नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ते रहें। पूरे मुल्क को शांति से रहना चाहिए और हमें अपने लिए भविष्य की राह बनानी चाहिए।
ये थे किम जोंग उनके शब्द। किम ने अपने देश के हथियार विकसित करने के कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने कहा कि दोनों देश शांति की राह से पीछे नहीं हटेंगे।
मैं श्रीमान किम के साहसिक फैसले के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सहयोग से हम साथ काम करेंगे। किम और मुझे एक दूसरे पर भरोसा है। हम हॉटलाइन के जरिए अक्सर बात करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे।
ये थे मून जे इनके शब्द। साझा बयान में दुश्मनी की कार्रवाई पर रोक लगाने, हथियार घटाने, अमरीका और चीन को शामिल करते हुए तीन तरफा बातचीत की कोशिश करने, विभाजन के बाद अलग हुए परिवारों को मिलने की इजाज़त देने, खेल आयोजनों में संयुक्त भागीदारी करने और पूरी सीमा पर रेल और सड़क संपर्क बनाने पर भी सहमति बनी। कोरियाई देश के नेताओं की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र थी। चीन, रूस और जापान समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस मुलाकात की सराहना की है। जापान और रूस ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ख्वा चुन यिंग ने कहा,
हम उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं के ऐतिहासिक कदम की सराहना करते हैं। हम उनके साहस और राजनीतिक नजरिए की भी तारीफ करते हैं। चीन में एक कविता है, तमाम गलतियों के बाद भी भाईचारा बना रहता है। मुलाकात के वक्त एक मुस्कान दुश्मनी को खत्म कर देती है। हम उम्मीद करते हैं कि पनमुनजोम में हुई इस ऐतिहासिक मुलाकात के जरिए प्रायद्वीप में स्थायी शांति और स्थिरता का नया चरण शुरू होगा।
ये थे ख्वा चुनयिंग के शब्द। उत्तर कोरिया के नेता मून की अगली प्रस्तावित मुलाकात अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा है, अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन आगे वक्त ही बताएगा।
जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में नवीन नेगी से सुना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं की आज ऐतिहासिक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायनों को समझने के लिए मैंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से बात की।
ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि ये न केवल उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं का एक शिखर वार्ता है, पर ये एक ऐसी वार्ता है जो तैयारी करेगी कि उत्तर कोरिया की जो शिखर वार्ता अमेरिका के साथ होने वाली है जून के पहले सप्ताह में, उसके लिए एक तरह से माहौल बनाया जाए। इसलिए इसकी जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है।
आपको लगता है कि परमाणु निरस्त्रीकरण वाली जो बात हो रही है वो ईमानदारी भरी पहल है या इस पहल को दिखाने के पीछे कहीं कोई और मंशा भी हो सकती है?
पहले भी 1994 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उत्तर कोरिया ने इस तरह का एक तरह से प्रॉमिस किया था कि उनका परमाणु शस्त्रों का कार्यक्रम जो है वो उन रिएक्टर्स को बंद कर देंगे और उसके बदले में जो पश्चिम के देश हैं वो उनको न्यूक्लियर पावर जनरेशन वाले रिएक्टर देंगे। वो फ्रेमवर्क अपने आप में लागू नहीं हो पाया। ऐसे ही 2003 में भी हुआ फिर से। तो पहले ऐसे हो चुका है कि उत्तर कोरिया के नेताओं ने इस तरह का संकेत किया और उस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको। तो हो सकता है ऐसा इस बार भी हो, पर यह भी हो सकता है कि इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि आप देखें कि उत्तर कोरिया के नेता जो हैं किम जोंग उन, उनकी दोहरी नीति है 2011 से आज तक परमाणु अस्त्रों का कार्यक्रम तो ये मान लें कि कंप्लीट हो गया है। तो अब उसको वो राजनीतिक तौर इस्तेमाल करके बाहर से निवेश और सहायता मंगाना चाहते हैं ताकि उनका जो आर्थिक उन्नति का कार्यक्रम है वो भी आगे बढ़े। इस वक्त उनकी तरफ से जो कोशिश है वो काफी जबरदस्त है। आप देखें कि उन्होंने पहले से ही कहा कि जितने भी परमाणु अस्त्र हैं या मिसाइलें हैं उनके टेस्ट उन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं। तो नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उनकी तरफ से शुरुआत तो लग रही है काफी जेन्युइन है, काफी सीरियस, और लगता है कि वो सचमुच चाहते हैं कि उनके रिश्ते पश्चिमी देशों से सुधर जाएं।
आपको नहीं लगता कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने ये पहल करके बॉल एक तरह से अब अमरीका के पाले में डाल दी है?
जी बिल्कुल डाल दी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको उन्होंने डिफेंसिव बना दिया है कि उनको एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है कि उनका एंथुसियाज्म कम क्यों है और किम जोंग उनका एंथुसियाज्म इतना ज्यादा उत्साह जो है वो कैसे है, और जो एक तरफा उन्होंने ऑफर्स दी हैं वो अमेरिका या दूसरे देश उसको किस तरह से लेते हैं।
ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2-3 महीने पहले तक की बात है। अमेरिका और उत्तर कोरिया दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे अपनी। ये हवा का रुख एकदम से कैसे बदल गया?
ये सवाल बना हुआ है, इसका कोई फिलहाल जवाब नहीं है कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की बात शुरू हुई 1 जनवरी इस साल से, जब किम जोंग उन ने अपनी नए वर्ष की भाषण में कहा कि वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं आगे। तो उसके पीछे कारण क्या है वो अभी साफ नहीं है। हो सकता है बाद में इतिहास में खोज करें, लोग शोध करें तो पता चले कि क्या वजह थी इसके पीछे, पर इस वक्त कुछ साफ नहीं है क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया में आर्थिक उन्नति की बहुत जरूरत है, उन्होंने इस तरह बार्गेन और नीति में और रुख में बदलाव लाने का एक कोशिश की है। बाद में नतीजा क्या निकलेगा वो अभी नहीं बता सकते।
उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात के अलग अलग पहलुओं का विश्लेषण कर रहे थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। दो देशों के नेताओं की एक अहम मुलाकात आज चीन के शहर वुहान में भी हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर गए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये 4थी चीन यात्रा है, लेकिन इससे पहले दोनों नेता कभी ऐसी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें होती रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शी जिनपिंग को अगले साल भारत आने का न्योता दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच सहयोग और सुनहरा भविष्य उन्हें तेज होता बेहतर होता नजर आता है। इस मुलाकात के जो आज शुरू हुई है वुहान शहर में भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच, और जो बातचीत कल भी जारी रहेगी, क्या बातचीत हो रही है और क्या बातचीत होने की संभावना है, ये समझने के लिए बात की हमने बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा से।
देखिए, ये एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर बातचीत नहीं हो रही, ये बातचीत हो रही है एक सामरिक दिशा देने के लिए जो चीन और भारत के रिलेशनशिप है। डोकलाम एक बेंचमार्क रहा है, क्योंकि जब दोनों देश ये नहीं चाहते कि युद्ध की कोई स्थिति आए, तो डोकलाम एक तरह से टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, जिसके बाद ही शुरू हुआ है ये सिलसिला कि एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग होना चाहिए दोनों नेताओं के बीच में। ये श्यामिन समिट जो ब्रिक्स की हुई थी वहां पर ये शुरू हुई थी। तो इसलिए अब बात हो रही है पोस्ट डोकलाम फेज की, और उस डोकलाम फेज में कहां कहां चीन और भारत की अलाइनमेंट है और कहां कहां नहीं है, तो इसके ऊपर बात हो रही है, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन देने की बात हो रही है। तो इसमें ये इस तरह का डायलॉग है जैसे मार-ए-लागो में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में हुआ था, या कैंप डेविड में जो होती हैं ट्रीट में बातें। तो इसमें पॉइंट आउट करना कि ये अचीवमेंट्स हुई हैं, ये संभव नहीं है। एक हो रही है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर से जुड़ी हुई बात है तिब्बत की, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन एक तरह से बनता है। अभी तक भारत और चीन के बीच में जो बात होती थी वो थी मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर, कि भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए गए ताकि एक युद्ध की स्थिति ना आए, लेकिन वहां से शिफ्ट हो रहा है और रेजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर के ऊपर शुरुआत का फ्रेमवर्क उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन चाइना की तरफ से तिब्बत इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये है कि कोई तिब्बत कार्ड या सेपरेटिज्म की बात ना हो।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान में हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दे रहे थे बीजिंग से वरिष्ठ पत्रकार अतुल अनेजा।
बीबीसी इंडिया बोल।
नाबालिग से बलात्कार के दोषी आसाराम को मिली उम्र कैद। आसाराम के भक्तों की संख्या लाखों में है, भारत और देश से बाहर भी उनके सैकड़ों आश्रम है। कैसे फैलता है धर्म का कारोबार, क्यों लोग आंखें बंद करके कर लेते हैं विश्वास, यही है इस बार बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 अप्रैल शनिवार शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
आज शुक्रवार है और हर शुक्रवार को आपको रहता है विवेचना का इंतजार और विवेचना में आज हम कर रहे हैं बात हेमवती नंदन बहुगुणा की। 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कहा जाता था कि उनमें भारत के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत थी। वर्ष 1977 में उन्होंने ही जगजीवन राम को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के लिए तैयार किया था। इस घटनाक्रम ने लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। हेमवती नंदन बहुगुणा के शताब्दी वर्ष में उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता अक्सर कहा करते थे, बहुगुणा के नाम पर मत जाइए, उनका व्यक्तित्व और चरित्र उसके ठीक उल्टा है। अपने आप में खासे तिकड़मी रहे सीबी गुप्ता को बहुगुणा की तिकड़म का स्वाद तब चखना पड़ा जब 1974 के विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ लखनऊ में न सिर्फ वो हारे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब दोनों एक पार्टी में आ गए तो गुप्ता ने बहुगुणा से पूछ ही लिया, बहुगुणा अब बता ही डालो कि 1974 में तुमने किया क्या था। बहुगुणा अपनी शर्मीली मुस्कान बिखेर कर बोले थे, पुरानी बातों को भूल जाइए बाबूजी। 77 के लोकसभा चुनाव के बाद जब मतपेटियों को सेफ हाउस में रखा गया तो बहुगुणा ने यह सुनिश्चित करवाया कि उस सेफ हाउस के रोशनदान तक को सील करवाया जाए। चंद्रभानु गुप्ता ने उस समय बड़ी बारीक और दिलचस्प टिप्पणी की थी, अब मुझे पता चला कि उस चुनाव में मेरी जमानत क्यों जब्त हुई थी। इस घटना में सच्चाई हो या न हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने जमाने में हेमवती नंदन बहुगुणा की गिनती भारत के सबसे चतुर नेताओं में होती थी। बहुगुणा को नजदीक से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार बीएन उनियाल कहते हैं,
बहुत तेज थे, मेधावी थे, बहुत जल्दी किसी भी इंसान को पहचानते थे, जिसे कहते हैं कि किसी के नस और नब्ज पहचानना। उस दौर में पूरे यूपी की ऐसी जानकारी उनको हासिल हो गई थी कि हर जिले के पंचायत से लेके ब्लॉक तक और राज्य स्तर तक हर शख्स को जानते थे, नाम से जानते थे, चेहरे से जानते थे, और खाली कांग्रेस के नहीं, सभी पार्टियों के हर शख्स को जो था जानते थे। और खाली जानना ही नहीं था, जैसे गोट बिठाना कहते हैं, जुगत लगाना, जानते थे किसकी नब्ज कहाँ है, कौन किसकी सुनता है, किसका किस पे असर है, किसके कहने से कौन क्या करेगा, कौन ना कहेगा, कौन हाँ कहेगा, कैसे इससे हाँ कहलवाना है।
बहुगुणा की राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद से हुई थी, जहाँ वो छात्र नेता और फिर मजदूर नेता हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान तब बनी जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही राजकुमारी अमृत कौर का चुनाव लड़वाने उन्हें मंडी भेजा।
1952 में जब पहला चुनाव हुआ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश से मंडी महासू एक कॉन्स्टिट्यूंसी है थी उस टाइम में, अब तो खाली मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से राजकुमारी अमृत कौर को टिकट मिला। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर थी, लेकिन कभी पहाड़ गई नहीं थी, तो कुछ दिन में वो तंग आ गई। उन्होंने कहा कि मैं कहाँ, मुझे भेज दिया जवाहरलाल तुमने। उन्होंने शास्त्री जी को कहा, भाई वो अलाहाबाद में एक था ना, वो पहाड़ी लड़का था, वो पहाड़ी वो भगोना वो कहाँ है वो। तो उन्होंने कहा कि वही होगा, बोले भेजो उसको, उसको भेजना है मंडी भेजो, उसे बोला अमृत के पास जाएगा, मदद करेगा अमृत की, बुलाओ दिल्ली उसको। मुझे कहा करते थे कि मुझे मालूम नहीं था मंडी कहाँ है, हिमाचल ये एरिया अलग था कांगड़ा मंडी का, हम गढ़वाल के लेकिन जवाहरलाल समझते थे कि भाई एक पहाड़ी सारा पहाड़ी, तो ये सोच के हमको यहाँ उन्होंने भेज दिया। तो वहाँ 2-3 महीना राजकुमारी अमृत कौर के साथ रहे। उन्होंने आगे जवाहरलाल से कहा जो लड़का बहुत अच्छा है, इसने बड़ा काम किया है, वेरी यूजफुल टू मी। तो जवाहरलाल की नज़र में आ गए, और जवाहरलाल की नज़र में आ गए तो लोकल कांग्रेस में भी इम्पोर्टेंट हो गए।
राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बहुगुणा अपनी तरफ से काफी जतन भी करते थे। मशहूर पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द जनता मेन में बहुगुणा से जुड़ा एक मजेदार किस्सा लिखा था।
1951 में जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो इलाहाबाद आए। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुगुणा को बुलाकर कहा कि वो नेहरू के स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी रैली करवाएं। बहुगुणा ने पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क में लोगों को जमा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जब रैली हुई तो टंडन पार्क लोगों से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन बहुगुणा को मंच पर नहीं जाने दिया गया। वो भीड़ के पीछे चले गए और चाट खाने लगे। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया, बत्ती चली गई और कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। लोग बेचैन हो उठे और भीड़ में से बहुगुणा बहुगुणा की आवाजें उठने लगीं। बहुगुणा भागते हुए मंच पर पहुंचे और उस पर उनके कदम रखते ही बत्ती वापस आ गई। लोगों ने नेहरू की उपस्थिति में ही नारा लगाया, बहुगुणा जिंदाबाद।
बहुगुणा के आलोचक कहते हैं कि उन्होंने ये सब स्टेज मैनेज किया था। 1971 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें पहले अपने मंत्रिमंडल में संचार राज्य मंत्री बनाया और फिर 1974 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें लखनऊ भेजा। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही उनके इंदिरा गांधी से मतभेद शुरू हो गए। खुद बहुगुणा ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
मेरे मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी से और मुझसे बुनियादी एक बात पर पहले ही झगड़ा हो गया। उनका ख्याल था कि मैं हर काम उनसे पूछ के करूं। मेरा कहना था कि बैक सीट ड्राइविंग संभव नहीं है। इतने बड़े प्रदेश का काम चलाने के लिए जो मुख्यमंत्री है उसको अपना निर्णय करना होगा, और मैंने उनसे साफ कहा कि मेरे कंधे पर आपका सर नहीं हो सकता। वो चाहती थी कि मैं उनके लड़के को लेकर उत्तर प्रदेश में घूमूं, जैसे राजस्थान और दूसरी जगह के मुख्यमंत्री घूम रहे थे। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा अपने पैरों इनको चलना होगा, काम करें, आगे बढ़ें, मेरे कंधे पर नहीं हो सकता।
उसी दौरान मशहूर उद्योगपति के बिरला ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा। उन्हें इंदिरा गांधी का समर्थन हासिल था, लेकिन बहुगुणा ने उनका विरोध किया, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। हिमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में पर्यटन मंत्री हैं, बताती हैं।
के बिरला की आप जीवनी उठा लीजिए। के बिरला ने बहुगुणा जी पे पूरे 5-6 पन्ने लिखे। इंदिरा जी ने उनको समर्थन दिया, लेकिन गुप्त रूप से, खुलकर नहीं, और ना ही उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। पिताजी का कहना था कि अगर पार्टी इनको उम्मीदवार बनाए तो मैं जिताऊंगा, वरना मेरे पिताजी देखिए लेफ्ट टू सेंटर की पॉलिटिक्स करते थे, समाजवादी सोच थी, वो वामपंथी लोगों के साथ ज़्यादा उनका विचारधारा मिलती थी। उन्होंने कहा मैं एक पूंजीपति को बिना पार्टी का टिकट मिले या बिना खुले समर्थन के मैं नहीं जिताऊंगा। संजय गांधी जी ने पापा को बुलवाया, ये नहीं गए। खुद आप पढ़ लीजिएगा उठाकर। के बिरला कहते हैं कि संजय गांधी जी ने कहा कि बहुगुणा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक कारण बना बहुगुणा के जाने का।
इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हो गईं जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को भ्रम हो गया कि बहुगुणा उनकी कुर्सी हथियाने की फिराक में है।
उन्होंने लखनऊ में एक ग्लोबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कराई। बहुगुणा मुंतजिम बहुत अच्छे थे, किसी भी चीज को इंतजाम करना हो नजर रखते थे, और उन्होंने ढंग से किया वहां पर कि हर मुल्क का डेलीगेट दिल्ली आते हुए जब इंदिरा गांधी से मिला तो कहा कि साहब बहुगुणा बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत काबिल है, और चारों तरफ उनकी वाह वाह होने लगे, खासकर मुस्लिम समाज में। और जैसा होता है हर दल में होता है, जब वाह वाह हुई तो 10 लोग उसके खिलाफ भी हो गए। उनमें एक मोहम्मद यूनुस इंदिरा गांधी के बहुत चहेते दरबारी लोगों में थे, उनको किसी काम से इंदिरा गांधी ने मिडल ईस्ट में तो लौट के आए, तो उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि वहाँ जाके कुछ मेरा तो कोई फायदा नहीं, जिसके पास जाइए वही बहुगुणा की बात कर रहा था। हर शख्स ये कह रहा था बहुगुणा बड़े काबिल है आपके यहाँ। तो मोहम्मद यूनुस ने कहते हैं काफ़ी काम इंदिरा गांधी के पर है, लेकिन कहा गया था बहुगुणा जो है अपना ग्राउंड बना रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए।
सार्वजनिक जीवन में तेज तर्रार नेता की छवि रखने वाले बहुगुणा का निजी जीवन कैसा था? हमने रीता बहुगुणा से पूछा कि उनके पिता के राजनीति के अलावा और कौन कौन से शौक थे?
पिताजी पढ़ते बहुत थे, कोई चीज हाथ में आ जाए, और उनकी मेमोरी बहुत गजब थी, जिस चीज पे एक बार निगाह पड़ गई भूलते नहीं थे। उन्हें खाना बनाने का शौक था, और मुझे अच्छे से याद है कि जब बहुत मूड में होते थे तो कहते भाई आज चूल्हा जलाओ, उन जमाने में कोयले पे खाना बनता था अंगीठी पर। एंड ही वाज अ वंडरफुल कुक, इतना बेहतरीन भोजन बनाते थे, पर वो स्पेशल चीज़ें बनाते थे, और वो हम लोगों का उस दिन पिकनिक डे होता था। लेकिन जब पापा मुख्यमंत्री मंत्री बन गए उसके बाद तो ये संभव नहीं हुआ। वो पुलाव बहुत अच्छा बनाते थे, सब्जियां जो हाथ लगा देते थे पिताजी वो उसमें तो जैसे समझ लीजिए स्वाद ही स्वाद भर जाता था। अच्छा वो नॉन वेजिटेरियन थे तो नॉन वेज खाना बहुत अच्छा बनाते थे। म्यूज़िक का शौक उन्हें ज़्यादा नहीं था, संगीतकारों में सहगल के गाने उनको अच्छे लगते थे ओल्ड टाइम।
जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे।
जब 1977 में जब आम चुनाव की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने जगजीवन राम से मिलकर उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देने के लिए मनाया। जनता पार्टी की चुनावी जीत में इस घटनाक्रम की बहुत बड़ी भूमिका रही।
वो चौहान साहब से मिले, चौहान साहब ने कहा कि क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो। चौहान साहब उनको हाथ पकड़ के बाहर लॉन में लाए कि अंदर टेलीफोन पर कहीं कोई यंत्र लगा हो, कुछ लगा हो सुन ले। तो चौहान साहब लॉन में बात करते थे, उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो बहुगुणा, नहीं नहीं मैं कांग्रेस से बाहर नहीं मानना चाहता। बाबूजी इसके साथ में कोशिश कामयाब होने में बहुत अच्छा लगा, मिलने के लिए भी बड़ा तंत्र मंत्र करना पड़ता था। हमारे जैसे दोस्त लोग काम आते थे वो कहीं से टैक्सी लेके आए, इंडिया गेट में उतर गए, वहाँ से पैदल जयपुर हाउस तक आ गए, वहाँ हम गाड़ी लेके चले गए, वहाँ कई जगह दसों गाड़ियाँ बदलते बदलते उनको छोड़ते थे। तो बाबू जी को कुछ लगा के संभव है, और वो संभावना और ज़्यादा तब बढ़ गई जब एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग बहुगुणा जी की, EMS नंबूद्रीपाद की और राजेश्वर राव की किसी पत्रकार के घर में डिफेंस कॉलोनी में हुई। बाबूजी पे सबसे ज़्यादा असर बहुगुणा जी के कहने का से ज़्यादा बाबूजी का बेटा था सुरेश राम, सुरेश राम को दिखाई दिया कि बाबूजी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो सुरेश राम प्लेड ए बिग रोल इन दैट एंड बहुगुणा जी यूज सुरेश राम टू परस्यूएट बाबूजी।
जनता पार्टी सरकार चल नहीं पाई और बहुगुणा ने एक बार फिर इंदिरा कांग्रेस का दामन पकड़ा। वहाँ एक बार फिर इंदिरा गांधी से उनकी नहीं बनी और उन्हें फिर कांग्रेस छोड़नी पड़ी। बहुगुणा 1984 का संसदीय चुनाव अमिताभ बच्चन से हार गए। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर कभी उठ नहीं पाया। बहुगुणा शायद उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए जिसकी कि उनके प्रशंसक या वो खुद उम्मीद करते थे, लेकिन एक बात तय थी, वो आम राजनेताओं से हट कर थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके पुष्पेश पंत कहते हैं,
मुझे लगता था कि एक व्यक्ति जिसने बड़े कौशल से और बड़ी दूरदर्शी दृष्टि से अपने को नेहरू के अक्स में ढालने की कोशिश की थी, वैसा ही चूड़ीदार पैजामा, वैसी ही शेरवानी, टोपी कुछ उसी तरह से बाकी तिरछी सर पर रखी हुई, तलफ़ुज उर्दू का उतना ही खालिस, हिंदी और अंग्रेज़ी में समान रफ्तार से बोलने की क्षमता, एक अपनी ऐसी पहचान बनाना कि छोटे पैमाने में कि मैं छोटा नेहरू हूँ और शायद किसी एक दिन उस कुर्सी पर जा के पहुँच सकता हूँ। दूसरी बात, जब तक मैं उनसे नहीं मिला था तब भी मुझे बार बार इस बात का एहसास होता था कि जिस तरह संगीत में संधि प्रकाश राग होते हैं, तो जो संधि होती है दिन के वक्त की, सवेरे की और शाम की, गोधूली वेला की और सवेरे अरुण के बाद सूर्योदय के बाद की, ये उस पीढ़ी के नेता थे कांग्रेस के जब आज़ादी मिली ही मिली थी इस देश को। मेरे ख्याल में हेमवती नंदन बहुगुणा जी के अपने दिमाग में जो अपनी छवि थी वो विचारधारा के आधार पर विविधता में एकता वाली, वो हिंदू मुसलमान हो, वो शहरी और ग्रामीण हिंदुस्तान की बात हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, गरीब के हितों का सवाल हो, बहुगुणा जी की छवि कमोबेश आज़ादी के बाद की पीढ़ी वाले नेहरू सरीखे नेता की थी।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। अगला कार्यक्रम नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।